कृष्णादेव कृष्णस्य मुक्त बांधा परब्रजे। कलिकाल में जप ध्यान समाधि यज्ञ तप ये सब कलिकाल सुनो इधर अभी दो मिनट के लिए बात बंद करो तो सब दो मिनट हमको दो। तो कलिकाल में जप तप दान ये सब का कोई भी महत्व नहीं है। किसी के पास शुद्ध द्रव्य नहीं है तो वो क्या दान करेगा। तामसिक द्रव्य कमाते हैं, बहुत कम सात्विक लोग कमाते हैं। और दान किसको देंगे, जो लेने वाले हैं दान योग्य पात्र नहीं उसका दुरुपव्यवहार करेंगे। मान लें कि आपने अस्पताल बनाया, अस्पताल में अच्छे लोगों के लिए आपने बनाया और वहां पर डकैत लोगों का इलाज होगा और फिर लोगों को मर्डर करेंगे अच्छा होकर के, तो इसका पाप किसके मत्थे आएगा, वो तुमको तुम्हारे मत्थे पर आएगा। दान के इसलिए आजकल योग्य पात्र नहीं है, लोग ही लालची लोग हैं। दान उसको देना चाहिए जो सत्पात्र है, जो उसका सद्व्यवहार करेगा, नहीं तो उसके लिए नरक होता है। ध्यान करेंगे ये संभव नहीं, चित्त विक्षिप्त दिन रात ये भी संभव नहीं। तप करेंगे, शरीर में तो बल नहीं है, स्मरण शक्ति है ही नहीं, क्या करेंगे तप। एकादशी का एक व्रत भी नहीं होता है, निर्जला नहीं होता लोगों को, तो इसे ये सब भी कलिकाल के लिए नहीं है। इसलिए सब शास्त्रों में विचार करके भगवान ने स्वयं चैतन्य महाप्रभु जी ने या हमारे आचार्यों ने शास्त्रकारों ने यह बतलाया गया। कलयुग में ही एकमात्र नाम के द्वारा ही सब कुछ लाभ होता है, सत्ययुग में समाधि के द्वारा तप के द्वारा, त्रेता युग में यज्ञ के द्वारा, द्वापर युग में अर्चन के द्वारा जो कुछ लाभ होता है वो सब कुछ भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा पाया जाता है। किंतु वो भी संकीर्तन कैसे, गुरु के चरणों में पदार्थ होकर के सदगुरु से दीक्षित होकर कीर्तन सुने। तो क्या बतला रहा, सबसे पहले सदगुरु के चरणों में आश्रय करके। सदगुरु माने कौन, जो दुर्गा काली कृष्ण ब्रह्मा परमात्मा देवता देवी सबको एक मानता है, ऐसा नहीं। सदगुरु वो है समस्त वेदों का सार जानने वाला, राधा कृष्ण की उपासना करने वाला, गुरु से दीक्षित गुरु की सेवा करने वाला, सारे संदेह को दूर करने वाला, निर्लोभी हो और संसार से विरक्ति हो, संसार की कोई चीज की तमन्ना नहीं जिसके हृदय में है, और वैसा भजनशील है, ऐसा सदगुरु हो राधा कृष्ण का भजन करने वाला, तब तो सदगुरु है। नहीं तो जो राधा कृष्ण का भजन नहीं करते, कहते हैं कि दुर्गा काली कृष्ण शंकर हनुमान सब एक बराबर, मुड़ी और मिश्री सब बराबर एक है, ये सब गंदे विचार हैं। जो लोग ये कहते हैं कि भगवान निराकार हैं और इस जगत में उतरते हैं जब तो शरीर धारण कर लेते हैं फिर शरीर को छोड़ देते हैं, ये भी गंदे विचार हैं। ऐसा नहीं, भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवानों के भी भगवान हैं, श्रीमती राधिका जी उनकी शक्ति हैं, उनकी जो उपासना करने वाले हैं, गुरु मंत्र अपने गुरु से लेकर के वैष्णवी दीक्षा और जो करते हैं, और कृष्ण के साथ में जिनका संबंध है ऐसा अपना संबंध जान करके कुछ अनर्थ दूर कर। अनर्थ दूर माने क्या? देह में आसक्ति को छोड़ करके, मैं ये शरीर हूं ये भी छोड़ करके, मैं कृष्ण का दास हूं स्वरूपता, ऐसा समझ करके जो ब्रज में रह करके भजन करते हैं वो सद्गुरु है। यदि वो ब्रज से बाहर हैं तो सद्गुरु नहीं है, इस चीज को समझो। किंतु अपने हृदय में ही ब्रज को रख करके और ब्रज की भावना से, ये ब्रज का भाव लेकर के यदि हैं कहीं भी, तो सद्गुरु हो सकते हैं। किंतु ब्रज का भाव नहीं है, राधा कृष्ण की उपासना नहीं करते, हरिनाम नहीं करते, राधा कृष्ण को सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड नहीं मानते और सबको एक बराबर करते हैं, तो ये सद्गुरु का लक्षण है। ऐसे गुरु से दीक्षा हरिनाम लेकर के और तब निरंतर भागवत श्रवण करे, गीता श्रवण करे, चैतन्य चरितामृत इत्यादि सेवा करके राधा कृष्ण के भजन की तरफ में अग्रसर हो, तो उसका लक्षण क्या है? उसको भी क्रमशः संसार से आसक्ति होकर के, दूर होकर के, वो आसक्ति कृष्ण के चरणों में, सद्गुरु के चरणों में, वैष्णव में, ब्रज में वो आसक्ति होगी। भजन करते रहे लाख वर्ष और हमारा मन जहां था वहीं रहा, राधा कृष्ण के चरणों में आसक्ति नहीं हुई, संसार में ही बनी रही, संसार में उसकी आसक्ति कम नहीं हुई, तो इसका मतलब जो भजन नहीं हो रहा। भजन करेंगे और संसार से आसक्ति नहीं जाएगी, कृष्ण के चरणों में ममता नहीं आएगी, वो भजन का लक्षण नहीं है। बहुत से लोग हम देखते हैं गोवर्धन की परिक्रमा खूब करते हैं, दिन रात दंडवती प्रणाम करके, किस लिए? संसारी कामनाओं के लिए करते हैं, जो मुक्ति के लिए करते हैं, उनकी वो परिक्रमा फल तो दे देते हैं गिरिराज जी, किंतु परिक्रमा का वो फल नहीं। जिन लोगों को भगवान की कथा में रुचि नहीं और ऐसे कामों में रुचि है, तो इसका मतलब है जो उनका परिक्रमा का भाव ठीक नहीं है। क्या होना चाहिए? निरंतर राधा कृष्ण चरणों में हमारी प्रीति बढ़ती जाए, हे गिरिराज गोवर्धन। आपके जो आराध्य देव हैं गिरिराज जी के, कौन है? ये राधा कृष्ण है, उनके चरणों में हमको प्रीति दीजिए। भले ही दंडवती नहीं प्रणाम करता, भले ही वहां पर परिक्रमा नहीं करता और मन ही मन रोज यहीं से परिक्रमा करता है और सब समय ये भावना रखता है, तो उसकी परिक्रमा सिद्ध है। श्रीमद् भागवत में कहा गया, हरि कथा में रुचि नहीं है और इन सब कामों में रुचि है, खूब परिश्रम का है ना, और भागवत की कथा जहां आरंभ हुई बात सो गए, तो फिर पंड से शाम, अर्थात वो परिश्रम बेकार का। इसलिए हरि कथा में रुचि होगी, हरि कथा सुनने के लिए उसके लाख कान पाने की लालसा जगी, हरि कथा बोलने के लिए लाखों जीवाएं बनने की चेष्टा होगी, हमारे लाखों जीवा हो और लाखों कानों से भगवान की कथाओं को सुने, जैसे हनुमान जी सुनते हैं, जैसे शंकर जी सुनते हैं, विश्वनाथ चौबती ठाकुर ने ऐसा कहा, लाखों हमारे कान हो जाए। आजकल संस्कृति हमारी कुछ धीरे धीरे नीचे गिर रही है। अब आप लोग जो प्रौढ़ उम्र के हैं या जरा वृद्ध हो गए हैं उन तक है, इसके बाद मैंने ये नई पीढ़ी क्या करेगी, वो महिलाएं भी आकर के क्या करेंगी, वो ब्रज का महत्व और भजन का महत्व नहीं जानती हैं, उनके लिए कुछ चिंता होती है, नहीं क्या उनका भविष्य होगा। इसलिए आप लोग कुछ उनको शिक्षा देंगे या देंगे, ये इस चीज को समझे महत्व को, घर का काम करें किंतु भगवान का भजन करते हुए करें, राधा कृष्ण के चरणों में अहित की भाव, कैसा हो भजन और कैसी यहाँ की स्थिति होगी उसके लिए बतला रहे हैं। वृंदावन मोहि लागे मोहि, हाँ क्या है, आली मोहे लागे वृंदावन, कैसा? घर घर तुलसी है? मथुरा वृंदावन में घर घर में तुलसी होनी चाहिए, उसकी परिक्रमा हो, उनकी सेवा हो, और ठाकुर जी विराजमान रहे, राधा गोविंद गोपीनाथ मदन में वहां पर विराजमान है घर घर में, उनकी भोग लगे तुलसी के साथ में, उस भोग को सभी लोग ग्रहण करें और पास में गोविंद जी हों, उनके मंदिर में जाकर के दर्शन कराएं शाम सवेरे। घर में ठाकुर जी की पूजा हो, आरती हो, तब तो वो घर घर है, नहीं तो श्मशान है। गले में तुलसी नहीं, तिलक नहीं, चोटी नहीं, तो वो क्या है? प्राण रहित शरीर है। जिनको राधा कृष्ण के चरणों में प्रीति नहीं है, उनको ब्रज में रहना धिक्कार है, ऐसा समझो। उनका जीवन बेकार का गया, भगवान ने बहुत कुछ दिया था किंतु उसको नष्ट कर रहे हैं। इसलिए राधा कृष्ण के यहाँ का घर घर में तुलसी, ठाकुर की सेवा हो, वैष्णव साधु संताएं घर में माधुकरी पहले से तैयार हैं, जो कब महात्मा जी आएंगे उनको माधुकरी दे। हमारे कितने वर्षों से, 500-700 वर्ष से देखते हैं सनातन गोस्वामी के पहले से ही घर घर में माधुकरी करते, जाति पीति का विचार नहीं, किंतु ये देखते थे कहीं प्याज लहसुन मांस मछली है कि नहीं। अब तो ये देखना पड़ता, पहले ये सब नहीं था। घर घर विशेष करके बनिया ब्राह्मण, इनके घरों में सदाचार रहता था, वैष्णवों का आदर होता था, घर में तुलसी होती थी, ठाकुर की सेवा होती थी। तो थोड़ा सा पद सुना दो तो। आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयस्तद्धाम वृंदावनम रम्या काचिदुपासना वजुवधुवर्गेण जाकल श्रीमद्भागवतम प्रमाणमलम प्रेमापमर्थो महान श्री चैतन्य महाप्रभुर्मतमिदं तत्रादरोह। इसमें बतलाया गया आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयः। भाई गड़बड़ मत करो, एकदम मत भाई कोई बात बोलो, ये दो घंटा एक घंटा हमारा है, आने तो मैं उठा करके यहाँ से बाहर कर दूंगा, ये घर मेरा है अभी। आराध्यो भगवान ब्रजे सतनयः। ब्रजनंदन श्याम सुंदर आराध्य हैं, कृष्ण नहीं। कृष्ण कहने से गड़बड़ हो जाएगा, क्यों? कोई द्वारकाधीश को समझ लेगा, कोई मथुरेश कृष्ण को समझ लेगा, कोई कुछ समझ लेगा। जो कृष्ण ब्रज में जन्म जिन कृष्ण का हुआ है, जो यशोदा जी के गर्भ से जो पैदा हुए, नंद बाबा की ज्योति अपने सिर पर लेकर के जो चलते थे, राधा जी के जो पंया पलोटते हैं, वो कृष्ण आराध्य हैं। जिनके हाथों में अधरों पर मुरली है, जिनके सिर पर मोर पंख का चूड़ा है, और सदा राधा जी से मिलने के लिए, गोपियों से मिलने के लिए लालायित और तृष्णा युक्त हैं, वो कृष्ण हमारे आराध्य हैं। जो वृंदावन से कहीं नहीं जाते, जो माता पिता नहीं बदलते, वसुदेव और देवकी को माता पिता नहीं मान लेते, और हजारों रानियों के साथ में शादी नहीं कर लेते, वो वृंदावन के रहने वाले ब्रजनंदन श्याम सुंदर हमारे आराध्य। केवल हमारे नहीं, समस्त भगवत्ता की सार हैं, इन्हीं से समस्त भगवान निकले हैं, ऐसा समझेंगे। कृष्ण ही सबके मूल हैं। कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड, ऑल गॉड्स इवन राम कल की बलराम एंड ऑल हैव कम आउट फ्रॉम हिम, सो ही इज सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड एंड ही इज वर्सेटेबल ऑफ ऑल इवन ऑफ बलदेव। वो आराध्य हैं, किंतु वृंदावन को छोड़ करके जाएंगे तो हमारे आराध्य नहीं होंगे। नाम बदल लिया, देवकी नंदन, वसुदेव नंदन, मोर मुकुट छोड़ दिया, बंसी छोड़ दिया, और गोपियों का साथ छोड़ दिया, अब नंद बाबा का ज्योति नहीं धोते और उनका नाम भी भूल गए, ऐसे कृष्ण से हमें कोई भी सरोकार नहीं है। इसलिए जैसे कृष्ण हमारे आराध्य हैं, वृंदावन भी आराध्य है। यदि कृष्ण चले जाते हैं कोई परवाह नहीं, हमारी राधा जी वहां रहती हैं, ब्रजवासी लोग रहते हैं, इसलिए कृष्ण के समान वो ब्रज भी हमारा आराध्य है। वैसे तो कृष्ण छोड़ करके नहीं जाते हैं, किंतु यदि कोई माने ये चले जाते हैं, कृष्ण चले जाएं, हम राधा जी को छोड़ करके ब्रज को छोड़ करके कहीं नहीं जाएंगे। आपने तो सुना है यहाँ पर मुक्ति भी जेवर बटती है, यहाँ पर लक्ष्मी जी झाड़ू देती हैं ब्रज में, कुंजों में झाड़ू देने का उनको सौभाग्य नहीं होता, ललचती हैं कुंजों में झाड़ू देने के लिए, किंतु ये मौका उनको नहीं मिलता लक्ष्मी जी को, जो लक्ष्मी नारायण के जो लक्ष्मी है, किंतु शोभा के रूप में वहां पर है। जयति जयति तेदिकम जन्म, सब समय जब से कृष्ण यहाँ पर जन्म ली है तभी से यह, इसलिए वारत। किंतु जगत में सबसे आराधना कौन सी श्रेष्ठ है? गोपियों की आराधना। गोपियों की कैसी आराधना है, कैसी आराधना, इस पर विचार करें। जगत गुरु कौन है? कृष्ण है ना, और समस्त आराध्यों के आराध्य ये कृष्ण है। और गोपियां कहती हैं कि हम थक गई हैं, हमारे पैर को दबा दीजिए, ये गोपियों की आराधना है। कृष्ण को वो जोड़ करके नमस्कार नहीं करती, कृष्ण कहते हैं गोपियों को, अब तुम राष्ट्र स्थली में आई हमें दर्शन करने के लिए, आप चंद्रमा कितना शोभित हो रहा है, मानो गुलाब उसे झर रहे हैं, गुलाल झर रहे हैं, पूर्व दिशा रूपी अपनी प्रियतमा को वो अबीर से मुख में लगा रहा है, कुमकुम लगा रहा है, बहुत ही सुंदर, चारों तरफ में दिन रात में खिलने वाले कमल लीली और कुमुदनी सभी खिले हुए हैं, बहुत सुंदर सुगंध, सुगंधित हवा बह रही है, धीरे धीरे शीतल मंद सुगंध बयार बह रही, और प्रकृति सुसज्जित है, और मुझे दर्शन करने के लिए आई, आपका स्वागत है, मैं आपके लिए क्या करूं, स्वागतम भो मां बा की करवाए, मैं क्या करूं। गोपियां चुपचाप देख रहे, इनका मन कैसा है, जगत गुरु का मन देख रहे। अच्छा मुझे देख लिया ना, तुम्हारा जन्म अब सफल हो गया, तुम घर में लौट जाओ, पति अंधे लंगड़े लूले हो तभी उनको छोड़कर के नहीं आना चाहिए, तुम घर में प्रवेशन कर रही थी, पतियों को खिला रही थी, छोड़ करके चली आई, कोई अपने बच्चों को खिला रही थी, छोड़ करके चली आई, कोई रसोई पका रही थी, दलिया पका रही थी, अधपली होकर के या जल रही थी, उसको छोड़ करके चली आई, कोई रोटी सेक रही थी एक पल्ले में वो जलती रह गई, छोड़ करके चली आई, कोई श्रृंगार कर रही थी उसको छोड़ करके चली आई, कोई एक आंख में काजल लगा रहा था उसको छोड़ करके चली आई, ये उचित नहीं मुझे लगता है। मैं तो धर्म की प्रतिष्ठा करने वाला हूँ, धर्म हमसे निकला हुआ है, और तो मेरी मान मान करके पति लंगड़ा कुबड़ा लूल्हा, यहाँ तक कि अर्थ कमाने वाला न हो, जैसा भी हो, पतियों का सेवा करना हमारी भारतीय नारियों का यह प्रथम कर्तव्य है। अभी ढूंढने के लिए तुम्हारे पति आ रहे होंगे, यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, लौट जाओ। इसे धर्म की हानि होती है, मेरे भी धर्म की हानि होगी तुम्हारे भी, इसलिए अच्छा है तुम लौट जाओ। गोपियों ने कहा हे जगत गुरु, विश्व ब्रह्मांड के जगत गुरु, आदि गुरु, आज तक ऐसी शिक्षा हमको कोई किसी ने नहीं दी, हम तो भटक रहे थे, किंतु इतना सुंदर शिक्षा देने वाले आप आए। तो शास्त्र कहते हैं पहले गुरु की पूजा करके तब किसी की पूजा करो, अब आपके समान गुरु हमको कहाँ मिलेगा, इसलिए आप कृपा करके हमारी पूजा को ग्रहण करें, नहीं तो धर्म का व्यतिक्रम का दोष आप पर लगेगा, आप धर्म नष्ट कर रहे हैं। गुरु होकर के और शिष्यों की सेवा नहीं लेंगे तो इसका पाप किस पर लगेगा, गुरु पर लगेगा, तो वो वेद शास्त्रों का आज्ञा को नहीं पालन कर रहा। ऐसे जगत गुरु कृष्ण को ये गोपियां शिक्षा दे रही हैं, दोनों में तर्क भी तर्क हुआ, अंत में विजय किसकी हुई, गोपियों ने जैसा कहा उसको कृष्ण को मान लेना पड़ा। यह है गोपियों की सेवा, जगत को सबको उपदेश देंगे किंतु गोपियों के सामने उनकी एक नहीं चलेगी, प्रत्युत्तर में प्राय हार जाते हैं, वो कहते हैं कि तुम ग्वाला हो गौवा चराने वाला हो, तुम्हारी बुद्धि स्थूल है गौओं जैसी, राधा जी की बुद्धि कैसी है? अत्यंत सूक्ष्म है। उनके सामने आपकी बुद्धि तनिक भी नहीं है। आप गाय चराइए, ये पासा खेला राधा जी के साथ आप खेलने योग्य नहीं है। गौओं के वो चराने योग्य आप कहें, जाइए लठिया लेकर के चराइए। राधा जी उनके पास में सबको उनको जीत लिया, उनकी मुरली भी ले ली, सब कुछ ले लिया। यह गोपियों की आराधना है। इसलिए कहते हैं आराध्य भगवान ब्रजेश तनयस्तद धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना बजुबधु वर्गेन जा कल्पिता श्रीमद्भागवतम प्रमाण। श्रीमद्भागवतम इसका प्रमाण है। वेद उपनिषदों से, शास्त्रों से, यहां तक कि वेदांत दर्शन से सबसे ये श्रेष्ठ प्रमाण क्या है? श्रीमद्भागवतम। जिस भागवत का इस कली काल में या कभी जो आदर नहीं करते वो मनुष्य नहीं, पशु हैं। साक्षात वेदांत दर्शन तो पढ़ते हैं किंतु उसका अर्थ नहीं जानते। वेदांत दर्शन का अर्थ क्या है? ये श्रीमद्भागवत। दोज़ हु डोंट हैव एनी बिलीफ इन श्रीमद्भागवतम, दो दे रीड वेदांत दर्शन ऑफ व्यास, बट दे डोंट नो द एक्सप्लेनेशन ऑफ रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ वेदांत सूत्र वेदांत भाष्य इज श्रीमद्भागवतम। ये भागवत है। सो आई थिंक दैट दे आर नॉट ह्यूमन बट दे आर इन ह्यूमन शेप, दे आर लाइक एनिमल इन एनिमल नॉट एनिमल काउज एंड ऑल दिस थिंग, दे आर डंकी लाइक डंकी। वो पशुओं में कैसे हैं? गधे हैं। दूसरों का भार, संसार का भार, बोझा ढोने वाले, और सार नहीं ग्रहण करते क्या? भगवत भक्ति। गोपियों की आराधना नहीं स्वीकार, उनका जन्म वृथा है। इस चीज को समझो। इसलिए थोड़ा सुनिए तो, राधा जी कह रहे हैं शायद हमारे श्याम को कहीं देखा है, याद है? याद है? आज तो छोड़ दो इसको, तो फिर कोई हाँ तो लो दस, इसके बाद नन वाल का। किंतु हम लोग जैसा समझते हैं वैसा सही नहीं है। है सहज, उसे धन धान्य मिलेगा, सांसारिक सुख भोग मिल जाएंगे सहज ही, और सांसारिक सुख भी मिल जाएंगे, यहाँ तक कि स्वर्ग सुख और मुक्ति भी मिल जाएगी सहज ही। किंतु भाई ब्रज का कृष्ण प्रेम नहीं इससे मिलेगा, उसके लिए विशेष तरह का भजन होना चाहिए। कैसे? महाप्रभु जी ने कहा तीर्णादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मान कीर्तनीय सदा। महाप्रभु जी ने देखा कि बहुत से लोग भजन करते हैं तो परिवार वालों से उनकी बनती नहीं, किसी परिवार से नहीं बनती। यदि एक घर में तीन भजन करने वाली लड़कियां हैं तो वो परस्पर लड़ेंगी, माता पिता का आदर नहीं करेंगे, नहीं सुनेंगे। और तीन भैया यदि हैं तो घर में किसी को नहीं रहने देंगे, सिर पर उसको उठा लेंगे सबको और तबाह कर देंगे सबको। गुरुजनों का आदर नहीं करेंगे, माता पिता का आदर नहीं करेंगे, वैष्णवों का आदर नहीं करेंगे, लड़ेंगे सब, अपनी बात को रखेंगे। ऐसे करने वाले भजन है, भले ही कृष्ण मंत्र में दीक्षित हुए जो कुछ हो, उनका हृदय कोमल होगा, मधुर वाणी होगी, सबको यथायोग्य सम्मान देंगे। स्वयं कैसे रहेंगे? वज्र की अपेक्षा दृढ़ रहेंगे किंतु पुष्प के समान कोमल उनका हृदय होगा। जहां भक्ति विरोधी बातें आएंगी वहां पर वज्र से भी अधिक कठिन होंगे, और जहां भक्ति की बात आएगी कोई वैष्णव होगा तो उनके सामने कैसे हो जाएंगे? पुष्प से कोमल हो जाएंगे। इसलिए यदि भगवान का भजन करना है, ब्रज का प्रेम करना है, तो ये श्लोक गले में कंटक के समान लग जाता है, बाधा देता है, ऐसा नहीं हो पाता, इसलिए वैसा कृष्ण का प्रेम नहीं मिलता। याद रखो यदि भजन करना है तो किसी का विरोध मत करो, लड़ाई झगड़ा मत करो। तीर्णादपि सुनिच, तीर्ण के समान दीनहीन हो जाओ। किसे? चलते समय में पैर के नीचे तीर्ण आ जाता है, वो नहीं कहता जी हमारे ऊपर पैर इसलिए रखा बेकारण, हमने तुम्हारा क्या बुराई की थी जो पैर हमारे ऊपर मरा, कहता है
नहीं करता,
थोड़ा सा ये करता है, यदि घास होगी तो आप पैर उस पर चलेंगे तो नीचे लग जाएगा, किंतु जब आप पैर हटा देंगे तब फिर वो खड़ा हो जाएगा। इसलिए कहा जी ऐसा नहीं, उससे भी देहीं, उसमें ये अभिमान न रहे कि मैं शरीर हूं, मेरा मान है अपमान है, ये भाव न रहे। यदि ऐसा रहेगा तो विरोध होगा, तो विरोध तो भजन क्या करेंगे, थोड़ा सा मान अपमान नहीं यदि सह सकते कृष्ण के लिए तो तू क्या भजन करेगा, थोड़ी की बात में क्रोधित हो जाता है, मान सम्मान में बह जाता है, भगवान का भजन नहीं कर सकता। मान अपमान क्रोध काम ये सबको फेंक देना होगा, तब वो ब्रज का प्रेम आएगा। इसलिए तीर्ण की अपेक्षा दीनहीन हो, और सहिष्णु कैसा हो, सहिष्णुता आनी चाहिए पेड़ों के समान। पेड़ों का जीवन अपने लिए नहीं होता, अपने लिए फलते फूलते नहीं है, उनकी जड़, उनकी छाल, उनके पत्ते, उनके पुष्प, उनके फल दूसरों के लिए होते हैं। पत्थर भी मारो तो फल देंगे, किसी को अपनी छाया से नहीं कहते कि तुमने पत्थर मारा इसलिए अपनी छाया नहीं देनी, अपना तन दे करके लकड़ी भी दे देते हैं, और उसे बेंच टेबल खाट जो कुछ बना लो उसको जला करके ताप लो, अपनी सुगंध देते हैं। उनका जीवन सब कुछ किसके लिए होता है, दूसरों के लिए। ऐसा वैष्णव का जीवन होगा, उनका जीवन ही होगा अपने लिए नहीं। आप लोग देखिए अपने छाती पर हाथ रख कर, अरे क्या होने लग गया, क्या होने लग गया, तो उनका जीवन अपना जीवन मिलाओ, देखो जैसे तुम्हें कितनी सहिष्णुता है, मान अपमान को सह करके गुरुजनों का आदर करना है, और त्रिनादपि सुनिश्चित है कि नहीं। इफ यू वांट टू डू भजन यू विल हैव टू फॉलो दिस श्लोक त्रिनादपि सुनिश्चित सरो सहिष्णुना अमानी ना मान। इफ यू आर यू हैव एंगर लस्ट ऑल दिस थिंग एंड ऑलवेज फाइटिंग विथ अनदर नॉट लाइक grasses, more humble than grasses, then you cannot do bhajan. You will have to be to see that the trees, they never live for them, always serving others. By their roots, by their branches, by their roots, by their shades, by their fruits, leaves and everything. Nothing for them. वैष्णव का जीवन भी ऐसा होगा, अपने लिए नहीं होगा, किसके लिए होगा, दूसरों के लिए होगा, तब तो वो वैष्णव है, नहीं तो नहीं। दूसरों को जो सम्मान के योग्य है उनको सम्मान देगा, जो वैष्णव दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहते वो भजन नहीं कर सकते हैं। दोस्त कैन नॉट गिव रेस्पेक्ट टू अदर्स टू देयर सुपीरियर्स एंड ऑल्सो जूनियर्स दे कैन नॉट डू भजन। जस्ट ट्राई टू लर्न ऑल दीज थिंग्स फ्रॉम द करेक्टर ऑफ चैतन्य महाप्रभु रूप गोस्वामी रघुनाथ दास गोस्वामी अप टू अवर गुरु परंपरा होल। इफ यू कैन नॉट फॉलो देन यू कैन नॉट हैव ब्रज प्रेम। दूसरों को सम्मान दो और अपने लिए सम्मान की आशा मत करो। कैसे सम्मान की आशा, दूसरों से सब समय कुछ भी जरूरत हो पेपर में छाप दो हमारा नाम, बस अपना स्वार्थ, दूसरों को सम्मान नहीं देना चाहते, ऐसे लोग भजन नहीं कर सकते। सब समय झगड़ालू स्वभाव का व्यक्ति कैसे भगवान का भजन कर सकता है। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि हमारे यहाँ पर जितने गुरु भाई भगनी हैं, हमारे संप्रदाय में दीक्षित हैं, वो दूसरों के साथ और अपने घर में भी अच्छा व्यवहार करें। मैं नहीं सुनना चाहता कि घर में किसी से लड़ाई हो गई, अपने माता पिता का उचित रूप में आदर नहीं किया, अपने भाइयों का आदर नहीं किया, अपने बहनों का आदर नहीं किया, ये उचित नहीं। अपनी पत्नी से लड़ाई झगड़ा हो रही है, यहाँ तक कि वो तलाक की अब तैयारी हो रही है, ये सब चीजें ना हो। यदि भजन करना चाहते हो तो ये जरूर ऐसा बनो, वैष्णव को सम्मान दो, अपने सम्मान की लालसा न हो, वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु बनो, काटने पर भी नहीं बोलता, कुछ भी नहीं करता, सूख करके मर जाएगा, ये भी नहीं कहे तुमको फल देता हूं जरा पानी तो दे। अपने लिए दूसरों को अपनी सेवा के लिए केवल नियुक्त करेंगे ऐसा मत करो। सबकी सेवा के लिए हमारा जीवन होना चाहिए। सब लोग भजन करें इसके लिए उसका हृदय रोए, तब तो वैष्णव है जो पीर पराई जाने। पराई पीर क्या है? पीड़ा। भगवान का भजन नहीं करने से शुकर पुकर गधे और हो रहा है, मनुष्य जन्म पा करके इसको विफल बना रहा है, इसको कैसे हम इसकी सहायता करें? इस पीड़ा को जान करके भगवत भजन के लिए उसको सहायता करता है वो वैष्णव है, दूसरा वैष्णव नहीं हो सकता है। इसलिए आप लोग अपने घरों से ही ये सब सीखिए और वैसा ही भजन करें। कहीं कहीं पर क्रोध का कारण उपस्थित होने पर भी क्रोध मत करिए, विशेष स्थिति में क्रोध पर कंट्रोल करके तब क्रोध कीजिए, दूसरों की भलाई के लिए, शत्रुता का भाव लेकर के नहीं। वो दया का पात्र है। एक आदमी आपको गाली दे रहा है, मान लिया खूब गाली दे रहा है, माँ और बहन की गाली दे रहा है, तो उसे हाथ जोड़ करके कहो कि भैया हमने तो तुम्हारी मैया को ही अपने मैया बना ली, हमारी मैया तो मर गई, अब तुम्हारी मैया को मैया बना रही है और तुम्हारी बहन को बहन, अब यदि तुम गाली देगा तो ये किस पर लगेगी? समझ में आ रहा है कि नहीं? जो हमको गाली दे रहा, हमने कहा ये तुम्हारी मैया मेरी मैया है भाई, अब मेरी तो मैया है नहीं, तो तुम यदि कुछ गाली भी देते हो तो तुम्हारी मैया के साथ में तुम्हारी बहन वो मेरी बहन हो गई, और फिर बतलाओ। तो ऐसी सब चीज को समझ बुझ करके भगवान का भजन करो, चित्त में कभी भी उद्वेग न रहे। उद्वेग पाने पर भी महाराज प्रहलाद महाराज की तरफ में, हरिदास ठाकुर की तरफ में अभी चल रहो। हम देखते हैं कि यहाँ हमारी कुछ हम लोगों के आश्रित हैं, एक दूसरे से मुख देखा देखी नहीं है, जब कीर्तन होगा तो उसको नहीं बुलाएंगे और हम उसके घर में नहीं जाएंगे, यह सब चीजें नहीं हो। पहले हमने देखा जो सब लोग मिल करके एक जगह कीर्तन करते थे, वो कीर्तन की प्रथा शायद उठ गई। एक हमारी थी बेटी, वो तो जरा थोड़ी सी अस्वस्थ हो गई, और दूसरे लोग सब मिलजुल कर कहने का। मैं समझता हूँ कि ये होना चाहिए, मान अपमान मत रखो, तो फिर भजन क्या रहा? दो बहनें भजन करती हैं तो उनसे परस्पर बोला बाली ने मारा मारी रोज झगड़ा, कहते हमें तेरा मुख नहीं देखेंगी, वो कहते तेरा मुख नहीं, यही भजन का फल हो गया। इसलिए ये सब चीजों को भजन की प्रारंभिक चीजें इसको सोचो, केवल कृष्ण कृष्ण कहने से या मंत्र जपने से नहीं होता, हृदय निर्मल करके ऐसा व्यवहार होना चाहिए, वैष्णव व्यवहार, तब तो भजन होगा। इसलिए ये सब समझ करके भगवान का भजन कीजिए और भगवान का नाम कीजिए। भगवान की महिमा जरा सुनिए तो सुनाइए।